ಪ್ರಭುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಸ್ತೋತ್ರ ಶತಸ್ವಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಆಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ್ಳಿ ಓಟಿ ಆಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ್ಳಿ ಓಟಿ ಆಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ್ಳಿ ಓಟಿ ಆಲ್ ಗೊರೀಸ್ ಆಲ್ ಗೊರೀಸ್ ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೀ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಚನಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಗದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೀಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವೀಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುಧೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಆಜ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಾ ತೀಸರಿ ದಿನ ಹೈ ಔರ್ ಆಜ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಬಾಲಾಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಸುನೆಂಗೆ ಔರ್ ಕಥಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ನಾ ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಕ್ಯಾ ದೇಖಾ ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಕಲ್ ಕುಚ್ ಕಥಾ ದೇಖಾ ಸುನಾ ದೇಖಾ ಥಾ ನಾ ಕ್ಯಾ ಥಾ ವೋ ಶಿಶು ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ ಮತಲಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಪೂಜಾ ವೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಬಾದ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಇಸಿ ಜೋ ದುಷ್ಕೃತಾಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ಲಿ ಆತೆ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧು ನಾಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕಾ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಲೀಲಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಲೀಲಾ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ ಥಾ ಹೈ ನಾ यानी कि वहां पे कौन कौन थे, युधिष्ठिर था, अर्जुन था, भीम था, कृष्ण भगवान था, है ना। तो उधर से ही हम लोग शुरू करेंगे ये बालाजी के बारे में भी। आगे में क्या होता है, अग्र पूजा हो गया है, उसके बाद में क्या होता है, राज्य से लेने के बाद तो दुर्योधन को थोड़ा जलसी होता है, तो उधर से शुरू होता है युधिष्ठिर के साथ मतभेद करने का, और वो जाके 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 महाभारत हो जाता है, और महाभारत में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का भी वधा हो जाता है, और बाद में अभिमन्यु का बेटा परीक्षित महाराज को, जब पांडव को मालूम पड़ गया कि कृष्ण भगवान ये जगत छोड़ के अप्रकट लीला में चले गए, एक लीला भगवान का क्या होता है प्रकट लीला, और दूसरा लीला क्या होता है अप्रकट लीला, मतलब यहाँ पे उनका लीला समाप्त हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान का लीला कहीं दूसरे जगह चल नहीं रहा है, वो तो चलती है, वो नित्यम है, नित्यम भागवत शिव है। हाँ, तो भगवान का लीला चलता रहता है, हर रोज चलते रहता है। तो परीक्षित आ गया, और परीक्षित का कहानी भी हमको थोड़ा मालूम है ना, क्या हुआ, परीक्षित एक बार जंगल में जाता है, याद है सबको, और जंगल में जाता है तो क्या होता है, भगवान का लीला से उन्होंने एक आश्रम को जाता है, कौन सा आश्रम, शामक मुनि का आश्रम को जाता है, वहां पे बहुत क्या बोलते हैं उसको, पानी से प्यासा होके वो आश्रम को जाता है, लेकिन वहां पे वो जो शामक ऋषि जो है वो ध्यान मुद्रा में, मतलब भगवान के चिंतन, ध्यान का मतलब क्या है, किसके ऊपर ध्यान करते हैं, सिर्फ भगवान के ऊपर जो ध्यान करते हैं वो सही ध्यान है, अष्टांग योगा में सिर्फ भगवान के ऊपर जो ध्यान करते हैं वो ही ध्यान है, तो वो भगवान के ऊपर ध्यान करते में मतलब पूरा निमग्न हो गया है, तो जब पूरा निमग्न होता है तो बाहिक प्रपंच का मतलब कोई ज्ञान नहीं रहता है ना, तो जैसा महाराज आया तो भी उनको मालूम नहीं पड़ा, महाराज ने पूछा दो बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूछा, अरे मैं प्यासा हूं थोड़ा पानी दिलाओ, पानी पिलाओ, पानी, लेकिन ऋषि जो है वो ध्यान में थे तो उन्होंने उनका खदर, मतलब उन्हें खदर नहीं किया, नहीं उन्होंने सुन नहीं पाया क्योंकि वो ध्यान में थे। तो ये भगवान का लीला है, परीक्षित महाराज बहुत डिवोटी है, तो उनको अभी ऐसा डिलीशन हो गया, जैसा अर्जुन को कैसे डिलीशन हो गया मैं कैसे लड़ूं, वैसा उनको भी डिलीशन हो गया कि अरे ये मेरा अहंकारी है ये ऋषि और मेरा बात नहीं सुन रहा है। वो भगवान का लीला से उन्होंने वहां पे एक सांप था, वो सांप उनके ऊपर डाल दिया, और उधर से शुरू होता है हमारा कथा, क्योंकि कल का था ना, कंटिन्यूशन में चलना चाहिए ना पूरे के पूरा। तो शामक ऋषि के ऊपर उन्होंने सांप डाल दिया और चल बसे, पानी देखा नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते दूसरा आश्रम या कहीं दूसरे जगह पे पानी ढूंढेंगे बोल के निकल गए। इस बीच में क्या है, ये आश्रम में शामक ऋषि का एक बेटा था श्रृंगी, 9-10 साल का लड़का था, उतना परिपक्व नहीं था, बच्चा था, उनका एक दोस्त था, उसका नाम कृषा, वो दोस्त का नाम कृषा, वो कृषा ने आके बताया जब श्रृंगी बाहर क्या कहते हैं उसको आश्रम में क्या होता है, बच्चे ब्रह्मचारी जाके रसोई के लिए लकड़ी ढूंढते रहते हैं ना, वैसा लकड़ी ढूंढ रहा था दूसरे बच्चे के साथ, एक कृषा भागते भागते आश्रम से आया, आके बताया हे श्रृंगी मालूम है तुमको, ऐसा परीक्षित आया है आके तुम्हारा पिताजी का अपमान किया। पहला तो बच्चा था, जानता नहीं था, और इसने ऐसे ही बोल दिया कि सीधा सीधा बोल दिया कि अपमान कर दिया, तो उसने बच्चे के ऊपर मान लिया, ये पहली गलती है। जो सुनते हैं हम वो सुन के हम तकी करते हैं, मतलब ये सही है बोल के हम लोग तकी करते हैं ना, वो गलत है। सुनने जो भी सुनते हैं उसको सही मानना गलत है, उसको विचारण करना चाहिए, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या इसका कोई उद्देश्य है। लेकिन जैसा मंथरा ने कैकेयी को बोल दिया, कैकेयी सुन बैठी है, तो गलती किसका है, मंथरा का है या कैकेयी का? जो सुन के उसके ऊपर काम करता है उसका गलती है, सुन के जो विचारण नहीं करता है। बहुत सारे बॉस ऐसे कह जाते हैं, किसी के ऊपर ऐसे कुछ बोल दिया तो वो ऐसे ले लेंगे तो वो सही नहीं होता है, तो विचारण नहीं किया वो गलती है, पहला श्रृंगी का। और बाद में बोला बच्चा है, परिपक्व नहीं है, तो उन्होंने शाप दे दिया कि अच्छा मैं दोस्त ने कहा कि अपमान किया मेरा पिताजी को, जानते हो मेरा पिताजी कौन है, और तुमने एक ऑर्डिनरी किंग हो। उन्होंने शाप दिया कि मालूम है हमको, क्या शाप दिया, ताक्षक आके तुमको 7 दिन के अंदर मार डालेगा। सांप ने डाला है ना, इसलिए सांप ही आपको 7 दिन के अंदर आपको मार डालेगा। शाप तो दे दिया, वो बच्चा है वो भूल भी गया, वो निकाल के आया। जब घर आया तो घर आके पिताजी को बता दिया, पिताजी पिताजी ऐसा हुआ, आपको मालूम है कि आपको अमान क्या है, वो मारा जाए। ये पिताजी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा परीक्षित आया है। वो ध्यान से उठ के देखा कि गले में तो सांप है, मारा हुआ सांप है। उन्होंने बोला अरे मारा हुआ सांप है ठीक है, आया होगा, निकाल के रख दिया। शामी को उन्होंने इसी का कोई परवाह भी नहीं किया, उनको मालूम भी नहीं है, तो उन्होंने उनको अपराध मतलब होने का चांस ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा ने बोला कि तुमको अपराध किया ऐसा डाल के मैं इसलिए उसको शाप दे दिया, शाम कृषि बहुत पछताए, अरे तुम बच्चा हो ऐसे कैसे तुमने सोचा कि उन्होंने मुझे अपराध किया, अगर मैं होश में होता तो वो मुझे सत्कार करता था, वो परीक्षित महाराज जानते हैं। तो तुरंत उसका दूसरा डिसाइपल एक था गुरुमुखा, गौरमुखा, वो डिसाइपल को बुला के गौरमुखा को इमीडिएटली भेजा कि परीक्षित महाराज के पास जाके तुम बता दो ऐसा कि शाप दिया। 8:30 हो रहा है तो थोड़ा जल्दी भागेंगे, तो आके बोल दिया कि ऐसा मेरा बच्चा ने गलती से आपको शाप दे दिया, तो 7 दिन आप थोड़ा फिर उनको क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरा जो भी जिम्मेदारी था, मेरा बच्चे बाप का जिम्मेदारी होते हैं, तो बच्चा का वो भी गलती होता है, 12 साल से अंदर वो बाप का गलती होता है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, और बच्चा को भी क्षमा कर दीजिए, आप जो भी दंड देंगे हम इसके लिए तैयार है। ऋषि था, ज्ञानी था, तो बोलिए। लेकिन परीक्षित महाराज भी डिवोटी था, उन्होंने पहले से ही सोचे अरे ये कैसे मैंने कर दिया ऋषि को, ऐसा नहीं करने का था, तो वो भी वो चिंतन में था, इसलिए बोला आपका कोई गलती नहीं है, आपका बच्चा भी कोई गलती नहीं है, मेरा गलती का मुझे सजा मिलना चाहिए, ये मैं सजा मानूंगा। और तुरंत उन्होंने गंगा के किनारे जाके वो पूरा मालूम है हमको कैसे भागवत सुनाया गया है। ये हो गया, जाने के बाद कथा हो गया, और सुत गोस्वामी शुक्रदेव गोस्वामी उधर से निकल गए। उसके बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, शाम आने वाली है, शाम होने वाली है, मतलब 7 दिन खत्म होने वाले, इसलिए ये राजा का जो परीक्षित महाराज के जो पदाधिकारी है वो लोग चिंतन में बैठ गए, अरे इतने दिन निकल गए, भागवत चल रहा था तो कुछ नहीं हुआ, मतलब भागवत जहां पर भी चलता है वहां पे ऑस्पिशियस होता है, वहां पे कोई इनऑस्पिशियस थिंग नहीं होता है, तो भागवत चल रहा था तो कुछ नहीं हुआ परीक्षित महाराज को, अभी भागवत खत्म हो गया कुछ होने वाला है, तो तुरंत उनके बंदोबस्त कर दिया कि एक किसी को भी उनके पास नहीं जाने दिया, कोई चीज को भी उनके पास जाने नहीं दिया। लेकिन होने का तो कोई टाल नहीं सकता है, तो एक तक्षक उधर आ गया, अभी जाने के लिए सोचता है कि वहां पे पूरा बंदोबस्त है, कैसे जा नहीं सकता है, इतने में सोचता था, इतने में एक ब्राह्मण उधर से गुजर रहा था, वो ब्राह्मण का नाम था कश्यप ब्राह्मण, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, बहुत ही पावरफुल ब्राह्मण था, और वो वैद्य विद्या भी जानता है, वैद्य विद्या मतलब क्या डॉक्टरी, तो उसमें ये भी आया था कोई पॉइजन आता है तो पॉइजन का कैसा विकृति करना है, क्या बोलते हैं उसको,
निवारण का, पॉइजन को निकालने का क्या बोलते हैं उसको? ओके, मालूम हो गया ना, वो भी जानता है मंत्र से कैसा पॉइजन का इफेक्ट निकालने का। तो सबको मालूम है, जब वो आता है तो तक्षक को मालूम पड़ा, अरे ये दिखता है सच्ची नहीं है मेरा पावर निकालेगा क्या, डाउट होता है। आके वो तुरंत तक्षक एक ब्राह्मण का रूप डाल के काश्यप के पास जाता है। हे काश्यप, मैंने सुना आप बहुत बड़ा वैद्यवान हो, ये शाप था तक्षक आके मारेगा, वो तक्षक को अभी आप तक्षक का विष को अभी आप ये कर सकते हो क्या? बोलता है मेरा क्या है, भगवान का इच्छा है तो कर सकता हूँ, मेरा कुछ मतलब अच्छा वाला था। अच्छा तो देखते हैं, जब वो उसका रिजर्व स्वरूप रहेगा, मैं तक्षक हूँ, अगर देखते हैं कि आप मेरा विष को हरा सकता है। तो सामने एक बड़ा झाड़ था, वट वृक्ष था, जाके वो वट वृक्ष को उसने धस मार दिया, एकदम वट वृक्ष उतना बड़ा वट वृक्ष हरा भरा एकदम वो भस्म हो गया, राख बन गया। और साथ ही साथ में तक्षक को भी मालूम नहीं था, ब्राह्मण को भी मालूम नहीं था काश्यप को, कि ऊपर एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक जंगल में रहता है आदमी, आदमी लोग ट्राइबल, ट्राइबल का आदमी कुछ पकड़ने के लिए वहां पे वो झाड़ के ऊपर था, वो भी राख जल के राख हो गया। तो जब ये काश्यप जो है वो पावरफुल आदमी था, फिर भगवान का नाम लिया, भगवत आज्ञा आया, भगवत कीर्तन, उन्होंने मंत्र पढ़ लिया, पूरा झाड़ पूरा फिर से वो राख से निकल के फिर से हरा भरा उठ के आ गया। सिर्फ झाड़ ही नहीं, झाड़ के ऊपर जो जो आदमी मर गया था वो भी जीवित हो गया उधर, इतना पावरफुल था वो काश्यप, उतना मंत्र भी उतना पावरफुल था। ब्राह्मण लोग ऐसे थे तब। तो ये देख के तक्षक को तक, अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गया, तो फिर से इसको कैसे भी काश्यप को थोड़ा ये करना है बोल के उन्होंने तक्षक जी बोला, काश्यप जी को बोला, काश्यप जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप पहली बार जो सोचना चाहिए कि ये परीक्षित महाराज का विधि है, मतलब उनका कर्मा है कि वो मेरा विष से मरना है उनको, तो आप मतलब उनका फेट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? और दूसरा चीज, उनको एक ब्राह्मण का शाप मिला है, अगर आप उनको जीवित करेंगे मतलब वो शाप को आपने उल्टा क्या असर का होता है, वो भी आप ब्राह्मण अपराध भी हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा ये पूरा शास्त्र वगैरह वगैरह दिखाया। तो काश्यप ने बोला, अरे सही है, मैं अभी तो मिला नहीं ना, और प्रॉमिस भी नहीं किया मैं जीवित करूंगा, तो मैं इधर से इधर ही चले जाऊंगा, तो मैं जैसा इसने बोला विधि को भी अपराध नहीं करूंगा और ब्राह्मण को भी अपराध करूंगा, और ठीक है सही है क्या बोलते सोचते वो, और थोड़ा पैसा भी दिया, आप ऐसा चिंता मत करिए अगर आप उठाएंगे तो राजा कुछ आपको पैसा देगा, तो मैं देता हूँ आपको पैसा बोल के। तो काश्यप निकल गया। तो फिर बाद में मालूम है तक्षक जाएगा, तक्षक उसका दोस्तों को ब्राह्मण के जैसा बनाया, और ब्राह्मण के साथ में वो भी एक ब्राह्मण मतलब एक फल के अंदर एक विष कीट के जैसा जाके वो गया, वो कैसे वो सिलसिला बाजू रखेंगे। अब ये क्या हुआ, काश्यप निकल गया ना, ये जो ब्राह्मण जहां पर भी जाता है उसको सारे एक उसको दिखा रहे हैं, मतलब उसको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती किया, सारा अशुभ होता है, किधर भी जाके किसने भी मिलता है अशुभ होता है, किसने भी बात करता है वो कुछ गलती पकड़ लेते हैं, कि ऐसा कुछ तो कुछ होते रहता है, ये चिंतन करते रहता है ऐसा क्यों हो रहा है मुझसे, ऐसे कहां गलती हो गया, कहां गलती हो गया, दिन साल बीतते जाते हैं, जाके 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 एक बार एक मुनि के पास जाता है, शाकल्या मुनि, मुनि के पास जाके वो पूरा उनका दुविधा बता देता है, ये ऐसा क्यों हो रहा मुझसे कहां पे गलती हो गया, तो पहले तो ऐसा नहीं था, मैं इतना पावरफुल हूँ, सब लोग मुझे मानते थे आदर करते थे, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो शाकल्या मुनि ध्यान में जाता है और पूरा समझ लेता है, आके बोलता है, हाँ तुमने ऐसा परीक्षित को सेव करने के लिए गया, रक्षा करने के लिए, लेकिन रक्षा किए बगैर तुमने वापस आ गए, वो गलत बात है। और ये बोलता है गलत बात, उतने वो तो एक ब्राह्मण था, वो ऐसा बोला कि मैं विधि का अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, और दूसरी बात वो ब्राह्मण का कर्स है, वो कर्स को कैसे ये कर सकता हूँ। तो शाकल्य बोलता है कि वैद्यो नारायणो हरि, तो अगर आप वैद्य वृत्ति कर रहे हो तो आप भगवान के समान होते हो। तो आपको जब तक आखिरी श्वास है तब तक के लिए आपको कोशिश तो करना ही चाहिए। आप विधि के विरुद्ध हो या ना हो, आपका ड्यूटी आपको करना चाहिए। वो कैसे होता है नहीं होता है वो पूरा विधि के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आपका कोशिश आपको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अटैचमेंट के बिना, मतलब इसको जीत करूंगा तो मेरा पैसा मिलेगा है तो इसको, ऐसा अटैचमेंट के बिना कर्मण्येवाधिकार से, तो फल आशक फल का आसक्ति लिए बिना आपको करना चाहिए थे, आप नहीं किया, इसलिए आपको घोर अपराध लग गया, घोर पाप लग गया। तो कश्यप बोलते हैं अरे अनजाने में मुझसे हो गया, फिर इसको क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं तब शाकल्यमुनि फिर से ध्यान करके कहते हैं कि आप ऐसा दक्षिण में जाओगे, वहां पे एक वेंकटाचल, मतलब अभी हम लोग हमारा टीम पे आ गए, हाँ वेंकटाद्री जहाँ पे श्रीनिवास जी है, उनके पास एक पुष्करणी है, अगर वो पुष्करणी में अगर आप नहाओगे तो आपको ऐसा कोई भी पाप नहीं होता है, वो धुल जाएगा, वो नहीं धुलेगा, तो आप जाके उधर नहा लीजिए। उतना पावरफुल पुष्करणी है भगवान के सामने वेंकटाचल। ये वेंकटाचल एक्चुअली कलयुग में उसका नाम है वेंकटाचल, लेकिन उसका नाम उससे पहले द्वापर युग में था कि शेषाद्री और शेषाचल, एंड त्रेता युग में था अंजना। त्रेता युग मतलब कौन है? राम जी आए थे ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अंजना जी कौन है? अंजना जी हनुमान की माँ, तो वो वहां पे रहती थी, तो अंजनाद्री। उससे पहले मतलब कृत्य युग में उसका नाम था वृषभाद्री, तो वो भगवान मतलब वैकुंठ से, एक्चुअली कहा जाता है कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि वो नृसिंगा वैकुंठ, नृसिंह देव का वैकुंठ है वो, नृसिंग देव का वैकुंठ से आया हुआ अनंत शेष है वो। अब वो लीला में नहीं जाएंगे, वराह देव का लीला में नहीं जाएंगे, नृसिंह देव का वराह देव का, तो वो पुष्करणी वहां पर है। तो अभी लॉर्ड श्रीनिवास, ये स्टोरी ऐसा है कि एक बार, हाँ ये तो आपको भी मालूम है, एक बार नारद सब ये पूरा गड़बड़ के पीछे नारद जी होना ही चाहिए ना, तो याद है ना एक बार आके नारद मुनि बोलता है कि ऋषि लोग बैठे हुए, तो बोलता है किसमें आपको ये त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति से बड़ा कौन है, याद है? अच्छा पता है। एक बार ऐसा हुआ कि यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ में भृगु महर्षि भी थे, यज्ञ करते भी मतलब यज्ञ जहां पे हो रहा तो नारद जी भी आए, यज्ञ के बीच में नारद जी को मालूम है ना, आके पूछा आप लोग इतना यज्ञ कर रहे हो लेकिन ये यज्ञ का फल जो है किसको ऑफर कर रहे हो, ये शिव जी को ऑफर कर रहे हो या ब्रह्मा को ऑफर कर रहे हो, विष्णु को ऑफर कर रहे हो? तो थोड़ा ब्रह्म मतलब नारद जी पूछते, नारद जी थोड़ा गुरु है, अगर गुरु पूछता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है ना, मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ होगा, तो सारे परेशान हो गए। लेकिन भृगु महर्षि वाज आल्सो, वो भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र थे और सप्तऋषि में एक है, मेरे ख्याल से विष्णु होना चाहिए, लेकिन आपको नक्की करता हूँ, मैं जाके परीक्षा करके नक्की करता हूँ। वो याद है ना, वो जाके ब्रह्मा के पास जाता है, ब्रह्मा जो है तब जब भृगु महर्षि जाता है तो सरस्वती देवी बाजू में बैठी रहती है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है उनका वो वेदा पढ़ते रहता है, इतना पढ़ने में निमग्न होता है कि वो ब्रह्मा जी को देखता भी नहीं है। लेकिन भृगु महर्षि नारद जी का मानस पुत्र है, मतलब बेटे के समान होता है, लेकिन बड़ा पावरफुल ऋषि है। वो सोचता है मैं ऋषि भृगु महर्षि आता हूँ तो भी मेरा ध्यान नहीं दिया ये ब्रह्मा, मतलब इसको थोड़ा चढ़ गया है। एक्चुअली किसको चढ़ा? हाँ भृगु महर्षि, इनको थोड़ा चढ़ गया, तो मतलब ये पूजा अर्हनी है, तो उनको शाप देता है ब्रह्मा जी को कि आपको ये कलयुग में आपको कहीं भी आपका मंदिर भी नहीं होगा, आपको पूजा भी नहीं होगा। शाप देते हुए ये ऐसा आदमी कभी भी वो एकदम पुरुष नहीं हो सकता है, देखते हैं शिव जी के पास, तो शिव जी के पास जाता है। जब शिव जी के पास जाता है तो शिव जी पार्वती जी के साथ नृत्य करते रहते हैं, तो नृत्य करते में उन्होंने उनका ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पार्वती जी देखती है, देख के पार्वती जी रुक जाती है। तो बीच नृत्य में अकबर पार्टनर रुक गया तो पूरा रसाभास हो जाता है ना, शिव जी को लगता है बीच में रसाभास हो गया, क्या हुआ? बोले तो पार्वती बोलती है भृगु आया हुआ है। भृगु एक तरफ से भाई होता है। ये तुमको कोई सिस्टम नहीं मालूम है, मतलब कोई क्या बोलते हैं एटिक्वेट मर्यादा मालूम नहीं है कि हम लोग नृत्य कर रहे हैं, नृत्य को भंग करने के लिए ऐसा तुम चले आ सकते हो अंदर, गलत है। बोले तो भृगु शुरू कर देता है, तुमको इतना भी नहीं है कि मैं आया हूँ, भृगु महर्षि आया हूँ, बंद करके तुम्हारा नृत्य मुझे आह्वान करना ये भी नहीं मालूम है, तो उल्टा वो शुरू हो जाता है। इस बीच में शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, वो मारने के लिए जाता है, तुमको शिष्टा नहीं है, तुमको मैं सीधा करूंगा। तो पार्वती जी बुलाते, नहीं 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 वो तो उसको तो मालूम नहीं है, अज्ञानी, तुम भी ऐसा उसको कूद पड़ेगा तो कैसा बोलते, शांत करती है। लेकिन वो गुस्सा में बोलता है तुमको इतना गुस्सा आ गया मेरा एक बात से, तो तुम पूरा कठोर आदमी हो, तुम्हारा स्तर देवता के जैसा नहीं है, तुम कठोर पाषंड बन जाओ, तुम्हारा पूजा पाषंड के जैसे होता है। तब से शिव जी का शिवलिंग का पूजा होता है, शिव मूर्ति जी का पूजा नहीं होता है। तो उधर से फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु जी वहां पे तब योग निद्रा में होते हैं, तो वो तो हर चीज जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, मतलब हर दिल में रहता है, हर एक के बारे में जानता है, वो जानता है भृगु कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कांड करके आया है और कैसे आ रहा है, कौन से मूड में आ रहा है, फिर भी देखने के लिए हंसी कैसा रहता है, मंदस्मिता, मतलब विष्णु भगवान ऐसा हंसते रहते हैं कि ये भृगु सोचा अरे मुझे देख के हंस रहा है ना? लेकिन विष्णु भगवान का फेस तो आके हंस रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, इसको भी चढ़ गया, बोल के वो आके अभी सो रहा है तो उठाएंगे इसको, मैं उठाता हूँ, बोल के पांव से मार देता है। ये तो पूरा हिस्सा मालूम है हमको। तो तब जाके विष्णु जी उनको फिर जैसा कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अरे मुझे मार के शायद आपका पैर का कुछ दुख गया होगा, बोल के उनको मसाज किया, ये कर, तो तब जाके उन्होंने हाँ ये सही है बोल के विष्णु जी नंबर वन है कहते हुए वो पास जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या होता है, महालक्ष्मी वहां पे जो बैठी है उनको बुरा लगता है कि मेरे जगह पे उन्होंने पांव मारा और मेरा पति जो है मेरे स्थान को कोई पांव से मारा तो भी उसको उसका पादा पूजा कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो गुस्सा आ जाता है लक्ष्मी जी को, वो कुछ नहीं कहते है, ना भृगु को कुछ कहते है ना महाविष्णु को कहते है, उधर से निकल जाती है। अगर मुझे नहीं चाहिए होता है तो आपको मैं आप तो निकल के आके वो आके कहां पे रहती है, एक प्लेस कॉल्ड करवीरपुरा, आज का वो करवीरपुरा क्या है, कोल्हापुर। तो वो कोल्हापुर में आके लक्ष्मी जी तपस करने लगती है। जब लक्ष्मी जी चले गया तो विष्णु भी प्रभु रफली कैन आई गो अप टू 9 o'clock और 9:15 वॉट एवर, ओके। सो विष्णु ढूंढते हुए आता है, कहीं भी नहीं दिखते है महाविष्णु, वो जान बुझ के वहां पे जाके चुपके का करते रहते हैं, क्योंकि महाविष्णु वहां पे पहुंचे नहीं, तो इधर इधर ढूंढता है कहीं नहीं रहता है। तो फिर एक जगह पे जाके जैसे ही उस जगह पे गया तो एकदम उनको शांत लगता है। क्यों शांत लगता है, वो उसी जगह पे गए है, वो वेंकटाचल, मैंने क्या कहा, वो वेंकटाचल कहां से आया है, वो वैकुंठ से आया है, नृसिंह भगवान का, वराह भगवान का वैकुंठ से आया हुआ है। तो एकदम हरा भरा कलरफुल वृक्ष और चिरपिंग बर्ड्स, मतलब आवाज करते हुए तरह तरह के आवाज करते हुए बर्ड्स और झरने हैं और इतना सुगंध भरा हुआ फ्लावर्स, इतना प्रशांत था वातावरण, क्योंकि वो तो वैकुंठ से आया हुआ है, उसको आज भी इसीलिए कहते हैं कि वो एरिया को भूलोक वैकुंठ, इतना प्रशांत रहता है। तो वहां जाने के बाद तुरंत श्रीनिवास जी को, मतलब विष्णु को लगता है कि प्रशांत लगता है, सोचा कि चलो मैं थक गया हूं अभी यहां पे थोड़ा मैं आराम करूंगा। तो आराम करने के लिए देखता है, वह पुष्करणी के बाजू में एक क्या बोलते हैं टैमरिन ट्री को क्या बोलते हैं, इमली का झाड़ के नीचे एक एंट हिल के जैसा होता है। एंट हिल का मतलब चीटी का गुहा, गुहा चीटी की गुहा होती है, वहां पे जाके वो आराम करने मतलब थकाव दूर करने की। अगर भगवान का थकाव मतलब भगवान का एक सेकंड भी कितना होता है, एकदम लंबा होता है, तो एकदम फिर चीटी की गुहा पूरा हो जाती है। ये इस बीच में ब्रह्मा शिवा वैकुंठ में विष्णु नहीं होता तो जगत का पालन कौन करेगा, कुछ गड़बड़ होते रहता है। तो ये लोग अरे महाविष्णु किधर गया, लक्ष्मी देवी नहीं है, महाविष्णु ढूंढते हुए आके यहाँ पे देखते हैं, पकता करते हैं, अच्छा अभी ये तो योग निद्रा में उधर चले गए हैं, फिर इनको कुछ तो खाना पीना देना है ना। तो तुरंत ब्रह्मा और शिवा जो है एक गाय और बछड़े का रूप धारण करते हुए वो वहां पे एक किंग रहता है, वो किंग का गाय का तबेला में जुड़ जाते हैं। और हर रोज आके वो एक काला गाय दैट मीन्स ब्रह्मा जी वो पूरा दूध ये एंट का गुहा चीटी का गुहा में पूरा दूध खाली करके खाली दूध के साथ वापस जाते हैं। जब किंग को चाहिए होता है दूध, इसके पास दूध नहीं है, तो किंग बोलता है ये जो शेपर्ड को रहता है मतलब जो उसको पालने वाला होता है, बोलता है तुमने पूरा चोरी किया इसका दूध, इतना अच्छा गाय है इसका दूध तूने खा लिया, सच बोलो। बोलता है मुझे भी मालूम नहीं है, ऐसा अगर कल भी ऐसा बोलोगे तो तुमको तुम्हारा गर्दन निकाल दूंगा, कल तक तुम सच मुझे बताना चाहिए, तुमको मौका देता हूँ, सोच लो और बता दो। ये डर जाता है वो गोरक्षक, वो उसके पीछे पीछे जाता है और दूसरा दिन देखता है वो पूरा दूध उधर नीचे डाल रही है वो एंट हिल के ऊपर, बहुत गुस्सा आता है, अरे यार मेरा गर्दन कटवा रही है ये, इसको बोल के वो उसके पास जो लाठी होता है वो लाठी फेंक देता है। जब गाय भगवान का इतना प्रीति पात्र है और कोई उसको मारने के लिए आएगा तो भगवान थोड़ी देखते रहेगा, तुरंत वो गाय को हटा देता है और खड़ा होकर हटा देता है, तो लाठी आके उनको लगता है, उनको लगने से खून इतना बहता है एकदम वो फाउंटेन के जैसा पूरा आकाश में जबकि वो पूरा एरिया में लाल कर देता है। इतना सडनली ये गोरक्षक जो होता है गाय निकल गया, एक आदमी आ गया मतलब सुंदर सा आदमी, उनका इतना घाव हो गया कि पूरा खूनी खून हो गया, ये देखते वो गोरक्षक सेंट हो जाता है। तो लेकिन उसके साथ में जो आए हैं वो दौड़ते हुए चले जाते हैं, भागते हैं उधर से, ये गाय भी भागते भागते किंग के पैलेस के पास जाके वहां पे वो रोते रहती है। किंग आके देखता है क्यों रो रही है, जाके देखो क्या है, तो वो गाय बुला लेके लाती है, सब राजा भी आता है गाय के साथ, आके देखता है तो यहाँ पे श्रीनिवास जी को मतलब भगवान को खून बहते हुए रहता है। राजा बोलता है क्षमा करिए मुझे मालूम नहीं है कैसे हो गया ये, बोलता है ये तुम्हारा आदमी ने किया, तुम्हारा आदमी मतलब राजा को जो भी प्रजा ने कोई भी गलती किया तो उसका पाप राजा को भी जाती है, उसने गलती किया तो तुमको पाप लगेगा, नहीं वो अनजाने में हुआ, मुझे भी मालूम नहीं था, उसको भी मालूम नहीं था, तो चलो ठीक है, फिर कैसे आपका खून बह गया, इसका क्या अपराध है। बोलता है नहीं एक काम कर सकते हो, तुम मुझे कन्यादान करोगे अगले जन्म में, तुम आकाशराज बनके तुम मुझे कन्यादान करोगे तो आपका पाप निकल जाएगा। देखिए भगवान का लीला, एक लीला हम सोचते हैं कि वो लीला से कितने लीला जुड़े हुए रहते हैं। तो भगवान तो वो जो राजा काल थोड़ा काल करने के बाद वो एक आकाशराया का नामक और एक राज किंग उसी इलाका के बनके वहां पे काफी दिन बीत जाता है, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं होता, लड़का या लड़की कुछ भी नहीं होते हैं। तो उन्होंने उनका कुलगुरु से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, वो बोलते हैं कि तुम पुत्र कामेष्टि यागा करो, पुत्र कामेष्टि यागा से आपको कोई पुत्र हो जाएगा। तो ठीक है, पुत्र कामेष्टि याग करने के लिए जहां पे याग करना है वो जगह पे हल चलाना पड़ता है राजा को। तो उन्होंने एक अच्छा गोल्डन कलर का सीता बना के, मतलब हल्का वो रहता है ना, उससे चलाते चलाते जाता है, तो एक जगह पे जाके वो चलाते रहता है, इतने में वहां पे उनको दिखता है एक क्या बोलते हैं उसको, पद्म, एक कमल, कमल का झाड़ दिखता है और उसमें अंदर कमल बंद रहता है। वो उठाते हैं, बंद है बोल के उनको खोलते तो भारी होता है, तो वो उठाते तो अंदर से एक लड़की दिखती है, तो वो लड़की को पाल देती, वो लड़की पद्म के अंदर से मिला, उसीलिए उसका नाम पद्मावती हुआ है। और वो पद्मावती कौन है, उसका भी एक लीला है। एक बार कृतयुग में महालक्ष्मी फिर से तब भी एक बार झगड़ झगड़ ली थी महाविष्णु से, झगड़ के वो धरती पे आई है। धरती पे आके झगड़ी है, लेकिन तो सहज है कि वो जन्म लेती है, लेने के बाद पति मेरा नारायण जी ही होना चाहिए, मतलब विष्णु भी होना चाहिए, तो विष्णु का तपस करते रहते हैं। लेकिन वो इतना सुंदर रहती है, इतना सुंदर रहती है, लेकिन वो कौन सा युग था, युग बोला मैंने कृतयुग। कृतयुग में कौन था, राम जी, और राम जी से पहले रावण, रावण जी रावण। तो रावण देखता है, रावण भी सुनता है ये जो ये महालक्ष्मी का सुंदरता, वो आके वो शादी करने के लिए प्रपोज करता है, बोलती है नहीं, मैं सिर्फ नारायण जी या महाविष्णु से ले छोड़ के, कृष्ण भगवान को छोड़ के और किसी को भी मैं शादी नहीं करूंगा। बोलता है मैं उनसे भी बलवान हूँ, तो जबरदस्ती करने जाता है, तो जबरदस्ती करने जाता है, तो तुरंत वो श्राप देती है, तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हारा ये जबरदस्ती से ही तुमको मैं सर्वनाश करूंगा, मैं खुद तुमको सर्वनाश का कारण बनूंगा, ना तुम्हारा तुम्हारा डायनेस्टी का। कहते हुए वो अग्नि को आहवानित करके अग्नि में वो अर्पण हो जाती है। जब अग्नि अंदर गई है महालक्ष्मी, तो उनको मालूम है रावण की पतन का कारण बनना है। जब राम जी वो मारीच को मारने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण भी पीछे पीछे जाते हैं, लक्ष्मण रेखा मार के, जब सीता मैया रावणास को देने के लिए वापस आती है, तो वहां पे लक्ष्मण रेखा से पार करने से वो अग्नि जी आता है। तब क्या होता है, ये अग्नि सीता मैया को लेके, ये माया सीता को, मतलब महालक्ष्मी, पूर्व महालक्ष्मी को, उनका नाम होता है वेदवती, तो वो वेदवती को उन्होंने छोड़ देता है। तो रावण जो हरण किया है वो वेदवती है, जो रावण के साथ जाती है लंका में और लावण का सर्वनाश का कारण बनती है। तो वो भी एक पास्ट टाइम, वो भी पूरा हो गया। जब राम जी उन्होंने रावण को मारने के बाद बुलाते हैं, जैसे वेदवती को लाते हैं विभीषण जी और लक्ष्मण जी, वो आते आते ही राम जी समझ लेते हैं कि ये सीता नहीं है, ये वेदवती है, इसलिए वो नजदीक भी नहीं आने देते हैं, तुरंत कह देते हैं कि तुमको परीक्षा, मतलब प्रूव करना चाहिए, तो तुम आग में कूदो। क्यों आग में ही क्यों बोला लीला, ताकि वो आग में गए तो सही सीता वापस आए। इस बार क्या होता है, सबको मालूम नहीं है, लेकिन अग्निदेव जो है दो सीता को वापस लाते हैं, ये भी पवित्र है और ये भी पवित्र है, आप दोनों को ले लीजिए, दोनों आप ही को चाहते हैं। लेकिन राम जी तब अग्निदेव को कहते हैं कि मैं इस युग में एक पत्नीवती हूँ, वता हूँ, तो मैं वेदवती को नहीं ले सकता हूँ, मेरा सीता को तो लूंगा ही, लेकिन वेदवती को मैं आगे जाके उसके बाद में मैं उनको स्वीकार करूंगा, तब के लिए उनको इंतजार करने के लिए बोल दीजिए। तो फिर से वो तब तक के लिए वो जाके ब्रह्मलोक में रह सकती है, ब्रह्मा भी उनको पूजा करेगा, तो तब वो वेदवती जो है ब्रह्मलोक जाती है। तो वो वेदवती अभी जब श्रीनिवास जी आए ना, तो उनके लिए वो पद्म में आई है, तो वेदवती बढ़ जाती है, उम्र होती है, जब उम्र होती है तो बाहर ऐसे गार्डन में घूमते रहती है। तो श्रीनिवास जी जब मालूम पड़ गया कि पद्मावती जी आ गई है, अब मुझे वो योग निद्रा से उठना है, तो वो उठ के, वो एंट हिल से योग निद्रा से उठ के, वो एक क्या बोलते हैं, हंटर के जैसे जाते हैं, जाके वेदवती का और इनका मिलन होती है। जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो जान लेते हैं कि ये मेरे भगवान है, बोल के वेदवती जान लेती है और ये भी जानते हैं कि ये लक्ष्मी जी है और वेदवती है और इनको मुझे, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। इतने में क्या होता है, ये जो वो वेदवती मतलब राजा का बेटी होती है ना, तो वो परिचारक जो होते हैं वो आके बोलते हैं, नहीं नहीं ये जगह तो कोई पुरुष को आने का जगह नहीं है, आप कैसे आ गए इधर, आपको जाना पड़ेगा, बोलते जबरदस्ती उनको भगा देते हैं। जब भगवान उनके मतलब वेदवती जी का माता जो राजा का बेटी थी उनके नजर से दूर हो गया तो वो बेर नहीं कर सकती, मतलब सह नहीं सकती है, और सह नहीं वो एकदम बेहोश हो जाती है और इनको पका देते हैं। तो भगवान को भी माता जी को मतलब नजर के सामने से, पहले तो वो तो महालक्ष्मी गया उनका विरह में, वो इतने साल ये कर रहा है विरह कर रहा, और इसमें एक मिनट के लिए मिला और उसके बाद में वो लोग भगाए, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा तो वो भी वापस जाते हैं। इस बीच में क्या होता है, और एक बार इधर आते हैं, जब भगवान को मार लगा ना वो लाठी से उस स्तर पे, तो भगवान धन्वंतरी को बुलाते हैं, धन्वंतरी को बुला के क्या करना चाहिए, वो धन्वंतरी बोलता है ऐसे ऐसे मूलिक मतलब क्या बोलते हैं जड़ी बूटी आप ढूंढ के लाइए और वो लगा लीजिए चले जाता है, बोल के वो पहले एक बार तो लगा के तो जाता है, बाद में उनको ढूंढना पड़ेगा ना, तब तो श्रीनिवास अकेले हैं और वैकुंठ छोड़ के आए हैं तो कोई परिवार तो नहीं है, तो एक बार ढूंढने के लिए जाते हैं। जाएंगे तो वहां पे नरसिंह भगवान वराह भगवान का झुंड होता है, उनके परिवार वो सारे इनके ऊपर कूद पड़ते तो श्रीनिवास जी भागते भागते फिर जाके वो आंठिल में बैठ जाता है। लेकिन जब बात पहुंचती है वराह भगवान को, वो जो वहां पे पहले से थे, तो वो वराह भगवान, कौन वराह भगवान है, वो जो ही वराह भगवान हिरण्यकशिपु ने जो भूमाता को पानी में डालता है तो उठाते है ना, वो ही आके वहां पे तपस करते रहते थे। तो कोई आ गया इधर कैसे आ सकता है, बोल के जाके देखते। जब वराह भगवान और श्रीनिवास एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों सेम है ना, ये भी कृष्णा है वो भी कृष्णा है, ये कृष्णा दूसरा कृष्णा को देखे कितना आनंद हो जाते हैं, तो गले लगते हैं और बोलते आप कैसे इधर हो, तो ये कृष्णा बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, लक्ष्मी जी ऐसे चले गए, मैं ऐसा हूँ। अरे तो मुझे पहले बताने का था ना, आप चोरी चोरी क्यों आने का, मुझे क्या मालूम है आप इधर है, अच्छा तो चल चल आप इधर रह लीजिए, बोल के वराहदेव का एरिया होता है वो, इनको वो पुष्करणी का साउथ के पास थोड़ा जगह देते हैं तो वहां पे रहते हैं। तो श्रीनिवास जी वो जगह पे आके बैठ देते हैं मतलब, और साथ ही साथ वो वराहदेव उनका एक सर्वेंट होती है बकुला देवी, वो बकुला देवी को सर्व करने के लिए श्रीनिवास जी के पास भेजती है। वो बकुला देवी कौन है, वो बकुला देवी कोई नहीं है, वो बकुला देवी देवकी मैया है, यशोदा मैया है। यशोदा मैया कृष्णा को पाली है, लेकिन जब कृष्णा जवान होता है, एक नहीं दो नहीं छह नहीं सौ नहीं हजार नहीं 16,000 शादी किया, लेकिन एक शादी भी यशोदा मैया देखा नहीं है। तो यशोदा मैया एक बार पूछती है कृष्णा ये क्या हुआ, एक शादी तो तुम्हारा कम से कम मैं देख सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भी तो तुम्हारा माँ हूँ ना, मुझे तो भी करने के लिए एक मौका दो। तो वो भगवान बोलते ठीक है तदास तू, मैं श्रीनिवास बनूंगा। तो देखिए एक एक लीला में भगवान सारे जुड़ जा रहे हैं। तो अभी वराह भगवान वो वकला देवी को इनको सेवा करने के लिए भेजते हैं श्रीनिवास जी को, तो वकला देवी उनको सेवा करते रहती है। जब श्रीनिवास जी आते हैं एक पागल खड़े ऐसा आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पद्मावती जी को दिया देखा, लेकिन वो लोग भगाए उधर से। तो अरे मैं तो मिला महालक्ष्मी जी को और फिर भी दूर हो गया, बोल के चिंतित होते हुए आते हैं। तो ये चिंता को कारण पूछती है वकला देवी, तो ये पूरा हिसाब बनाता है श्रीनिवास जी, पूरा हिसाब बता देता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं महाविष्णु हूँ, ऐसा राम काल में ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, वो पद्मावती वहां पे है, लेकिन एक बार ही देख पाया हूँ, बात नहीं देख पाया हूँ, तो आप कैसे भी करके हमारा शादी करवाओ। तो बकला देवी आनंद होती है, क्योंकि उनको भी माँ के दिल है ना यशोदा मैया का, तो ठीक है मैं करवाऊंगा तुम्हारा शादी। वो भगवान भी जानते हैं ये तो एक लेडी क्या कर पाएगी, तो जैसे वो माँ आती है तो एक अच्छा घोड़ा और परिवार उनके साथ में भगवान दे देते हैं, और उनको जाने के बाद भगवान खुद क्या बोलते हैं एक फ्यूचर टेलर होते हैं ना, फ्यूचर टेलर को क्या बोलते हैं, ज्योतिष नहीं वो जंगल में कुरवंजी का मतलब जो पहाड़ में रहते हैं लेकिन वो आपका फ्यूचर के बारे में बता देते हैं किंग कहते हुए वैसा एक लड़की के रूप में जाके वो किंग के पास जाके वहां पे पूरा सबका भगवान है किसके फ्यूचर नहीं जानता है, हर एक को पकड़ के तुम्हारा फ्यूचर रहता है, पहले ऐसा हुआ आगे ऐसा बना वाला सबको बोलते रहता है। तो ये सुन के रानी जी को भी अच्छा लगता है। रानी जी को क्या हुआ, जो पद्मावती को लाए थे मूर्छित में आई थी, तो उनके परिवार जो होते हैं उनसे पूछे क्यों ये मूर्छित है, डरते हैं क्यों, अगर कोई लड़का आके देखा है इसलिए वो मूर्छित बोले तो तुम लोग क्या कर रहे थे, लड़का को कैसे आने दिया उधर, बोल के डांटेगी रानी ने। तो उसने चुपचाप मालूम नहीं है पता नहीं जाते जाते अचानक गिर गई, तो अचानक मूर्छित हो गई बोलते हैं। तो ये उनकी माता जी चिंतित होती है, अरे क्यों मूर्छित हो गई। तो जब उसको मालूम पड़ा कि ऐसा कुरवंजी आ रहा है, कुरवंजी आई है, तो बुलाती उसको बुलाओ इधर बुलाओ। तो आने के बाद बोलता है ये क्या हुआ, इसको लगता है कि ये तुम्हारा लड़की ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, ये तो महालक्ष्मी है, और ये महालक्ष्मी कहीं श्रीमद नारायण जी को मतलब विष्णु को या कृष्णा को देखी है इसलिए मूर्छित हो गई है, वो उनका पूर्व स्मृति आ गई है तो वो पूर्व स्मृति के भाव में वो मूर्छित हो गई है। ऐसे कैसे नारायण जी को अभी दिखा है, तो कैसे करे, आप चिंता मत करो वो नारायण जी कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। बोलते कि अब किंग भी बोलेगा अरे ऐसे कैसे मैं उसको दे दूं, पहले वो लोग पूछना चाहिए ना, कन्या को ऐसे थोड़ी दान करेंगे, पहले पूछना। तो बोलते नहीं नहीं वो नारायण जी कुछ न कुछ इंतजाम करेगा, कोई आएगा आपके पास मैसेज लेके कि वो लड़की को पूछने के लिए, तब जाके आप दे दीजिए। देखिये पूरा लीला ही लीला। तो इतने में और बता के उधर से तुरंत गायब होकर इधर आ जाते हैं, और इतने में ये कुरवंजी जो है मतलब वक्रा देवी जो है उधर जाती है, जाके सीधा किंग पैलेस के कौन है, ऐसा मैं आया हूं बोलो, आने दो बोलती कौन है, मुझे आपका लड़की चाहिए। अरे बापे आप कौन है, मैं कौन है, चिंता मत करो मेरा लड़का चाहिए। आपका लड़का कौन है, लड़का कोई नहीं है, वो साक्षात देवकी वसुदेव का बेटा है और वो यदुवंशी है, उसके लिए मैं आपका बेटी चाहता हूं। तो तुरंत रानी बोलती है अरे हाँ, वो भी ऐसे बोली कि साक्षात कृष्णा खुद आएगा इसके लिए हाथ, और हाथ मांगने लिए किसी को भी भेजेगा, तो इसको भी ठकाना नहीं, वो राजा को बता देती है, राजा भी बोलेगा हाँ चलो ठीक है शादी हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाता हूं, अभी 9:05 हो गया, 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। तो शादी करना है तो फिर मामूली सी बात नहीं है, तो कितना सा पैसा चाहिए। तो श्रीनिवास जी बोलते हैं कि कैसा करना चाहिए, तो चिंतित होता है। इतने में जब इनको मालूम पड़ा वराह देव वहां पे होता है, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, ब्रह्मा को बुलाओ ना इधर। तो ब्रह्मा को बुलाते हैं, शिवाजी को बुलाते हैं, गरुड़ को भेजते, वो लोग आए तो पैसा चाहिए, तो फिर कुबेर को बुलाओ। तो कुबेर बोलता है मैं ऐसे थोड़े पैसा दूंगा, तो फिर क्या चाहिए, मैं उसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के साथ मुझे चाहिए, हाँ चलो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। फिर कैसे बनेगा, इतना पैसा लेता है कि वो इंटरेस्ट कलयुग का एंड तक देते रहना पड़ेगा भगवान को। उतना लेता और तुरंत और विश्वकर्मा को बुलाके अभी पूरा आ गए, ब्रह्मा आ गए, शिवा आ गए, इंद्र आ गए, देवेंद्र, पूरा देवा देवा सारे आ गए, सबके लिए रहने का तो वसती होना चाहिए ना। बोलता है विश्वकर्मा को सारे के लिए यहाँ पे महल बनाओ, और यहीं पे नहीं, मेरा शादी उधर होने वाला है, वो आकाशराज के पास भी उतना नहीं हो सकता, उधर भी बना जाओ जाके। और ये विश्वकर्मा जाता है, उधर भी भवन बना देता है, उधर एक कल्याण मंडपम बनाता है, एकदम पूरा इंतजाम हो जाता है, शादी तो होता है। अब क्या हो गया, शादी होके दोनों को विदा करते हैं, आराम से रहने लेते हैं। इस बीच में फिर से नारद जी थोड़ी छोड़ेगा, नारद जी फिर से कोल्हापुर पहुंचता है। अरे महालक्ष्मी जी आप क्या कर रहे हो इधर, वो तो शादी करके आराम से मजा ले रहा है, आपने तपस कर रहे हो। आपने गुस्सा आ जाती है महालक्ष्मी को, अरे फिर से यार दूसरा काम करने लगा। वो गुस्सा में फिर से महालक्ष्मी उधर कोल्हापुर से इधर एकदम रौद्र रूप से आते रहते। तो जब शिवाजी को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी आ रहा है, शिवाजी थर्थर मतलब महालक्ष्मी मतलब माता जी इसके बारे में कौन उनका गुस्सा भर सकता है ना, तो परेशान होते रहते हैं यहाँ पे विष्णु। तो वो तो परेशान हो रहे थे, लेकिन उसके साथ में जो पद्मावती होते हैं तो बोलते हैं चलो चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। तो पद्मावती जी पहले उधर आगे चलती है, जैसा महालक्ष्मी आती है तो बीच में एक जगह पे जाके वो काफी दूर हो गया कोल्हापुर से इधर तिरुपति तक चलते चलते, तो बीच में पकड़ लेती है और उनका बहुत सेवा करती है, बहुत खूब सेवा करती है, इतना सेवा कि महालक्ष्मी संतुष्ट हो जाए। पहले से पद्मावती जी को देखते तुरंत लक्ष्मी जी का अंदर एक सा प्यार सा, मतलब वो भी लक्ष्मी जी है और ये भी लक्ष्मी जी है, हा? तो आपस में तो होता है ना, नेचुरल होता है, पहले से तो उनका इतना अनुभव लगता है और इतना सेवा करती है। बहुत दिन पूछती है तुम, मैं तो संतुष्ट हो गया हूँ तुमसे, तुम जो भी मांगोगे चाहिए मैं देता हूँ, तुम कौन हो क्या चाहिए। तब पद्मावती बोलती है मैं ऐसा वेदवती हूँ और मैं ही हूँ, मैं आपका पति से शादी किया हूँ। तो एक क्षण के लिए उनका गुस्सा उड़ जाती है, बाद में जब उन्होंने बोला मैं ही हूँ वेदवती, एक्चुअली वो सीता ने खुद बोली हुई थी राम जी को, मेरे लिए पूरा कष्ट लेके 14 वर्ष राक्षस के साथ में वन वे मेरे लिए तपस की है, थोड़ा इसको आप थोड़ा तो कृपा कर दीजिए इसको। तब राम जी ने मना किया था ना, तो याद आती है अरे मेरे लिए वहाँ पे वो सेवा करी थी ना, चलो ठीक है। तो वो आपस में मिल जाते हैं और दोनों मिलके हंसी खुशी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीनिवास जी जब मालूम पड़ गया और नजदीक आ रहा है, वो नजदीक आता है तो उनको इतना ये हो जाता है, वो एकदम मूर्ति बन जाते हैं। जब तक वो आए वो श्रीनिवास जी एक मूर्ति के रूप स्थापित होते हैं, वो ही मूर्ति मतलब स्वयं भगवान जो मूर्ति बना हुआ है वो ही श्रीनिवास, वो तिरुपति का श्रीनिवास जी है। तो ये हुआ श्रीनिवास जी का कथा। और जैसे लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी श्रीनिवास जी का लेफ्ट मतलब हृदय के पास यहाँ पे श्रीवत्सा बोलते हैं ना, वहां पे लक्ष्मी जी रहती है महालक्ष्मी, और ये पद्मावती राइट हैंड की तरफ रहती है हा? तो ये हुआ थर्ड। बाकी के इसमें साथ में बहुत सारे पास्ट टाइम्स है, लेकिन अभी 9:10 हो गया, मैं थोड़ा विराम लेता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पूछते थे नहीं तो। और एक बार श्रीनिवास भगवान का नाम लेते हुए हम खत्म करेंगे। श्रीनिवास कभी गए थे बालाजी को, क्या बोलते हैं गोविंदा गोविंदा, मैं हर एक नाम लेता हूँ, आप आखिरी में गोविंदा गोविंदा बोलना ठीक है। श्रीनिवास भगवान की जय, गोविंदा गोविंदा, एडुकोटला वास गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, आपद मुक्त गोविंदा गो कृष्ण।